أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جماعت احمدیہ جس ابتلاء کے دور سے گزر رہی ہے یہ اس نوعیت کا ابتلاء نہیں ہے کہ جس کا جلد کنارہ آ جائے کیونکہ جتنے لمبے سفر ہوں اسی کی نسبت سے راہ کی مشکلیں بھی ہوا کرتی ہیں. ترقی کے جس دور میں جماعت احمدیہ داخل ہو رہی ہے اور اگلی صدی کی شاہراہ جن بلند تر اور عظیم تر منازل کی طرف جماعت احمدیہ کو بلا رہی ہے ان کے نتیجے میں کچھ ایسے بھی ہم پر ابتلاء آ رہے ہیں اور آئیں گے جن میں سے ترقی کے لیے قوموں کا گزرنا ایک تقدیر مبرم ہے اور آج تک کبھی کوئی مذہبی جماعت بھی ان مشکلات سے گزرے بغیر ترقی کی منازل طے نہیں کر سکی. لیکن جتنا لمبا یہ ابتلاء کا دور چل رہا ہے یا آگے چلے گا اسی کی نسبت سے خدا کے فضل ضرور نازل ہوں گے. اس لیے جہاں ایک طرف نگاہ کر کے خوف پیدا ہوتا ہے وہاں دوسری طرف نظر کر کے حوصلے بڑھتے ہیں اور نئی امنگیں اور نئے ولولے پیدا ہوتے ہیں. وہ لوگ جن کو پہاڑوں پر چڑھنے کا تجربہ ہے وہ جانتے ہیں کہ دو طرف ہی نظریں جایا کرتی ہیں یا ان گہری کھڈوں کی طرف جن میں ایک لہجہ کی غلطی بھی انسان کو اگر گرا دے تو اس کے جسم کے پر خچے اڑ جائیں اور بسا اوقات بیچ میں سے چٹانیں ایسی ابری ہوئی ہوتی ہیں کہ زمین کی گہرائی تک پہنچنے سے پہلے پہلے ہی انسان کے چیتھے اڑ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ بلند پہاڑیاں ہیں بلند چوٹیاں ہیں جو ایک کے بعد دوسری ابھرتی چلی جاتی ہیں اور انسان جب ایک طرف نیچے کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر بلندی کی طرف بھی دیکھتا ہے. وہ بلند پہاڑیاں اس کو اپنی طرف آنے کی دعوت دیتی ہیں اور اس دعوت میں کتنی قوت ہوتی ہے کہ انسان تھکا ہارا بھی ہو پاؤں دکھ رہے ہوں یا جسم کے عضو عضو میں تکلیف محسوس ہوتی ہو بلندی جب نہ دکھائی دیتی ہے اس کے ساتھ ہی ایک حوصلہ بڑھتا ہے اور انسان یہ عزم کرتا ہے کہ اچھا جیسا بھی ہو میں اس چوٹی تک ضرور پہنچ جاؤں گا. اور جب وہ اس چوٹی تک پہنچتا ہے تو اس سے آگے ایک اور چوٹی دکھائی دینے لگتی ہے اور جب پھر اس چوٹی تک پہنچتا ہے تو اس سے آگے ایک اور چوٹی دکھائی دینے لگتی ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے. دنیا کی رفتوں میں تو کوئی سلسلہ بھی لامتناہی نہیں ہوا کرتا لیکن جہاں تک روحانی عظمتوں اور مذہبی رفتوں کا تعلق ہے यकीनन ये सिलसिला लामुतना ही है। इसलिए दुनिया की चोटियां सर करने वाले एक इस बात पर तो जरूर उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि इस चोटी के बाद अगर एक और भी आई और एक और भी आई तो आखिर इस सिलसिले का कोई अंजाम होगा और उसके बाद उस बुलंदी पर बैठकर हम कह सकते हैं कि जो भी बुलंदियां सर की जा सकती थी वो सब हमने सर कर ली। लेकिन एक मजहबी तरक्की करने वाली जमात या रूहानी तरक्की करने वाला फर्द बुलंदियों की तरफ सफर तो करता रहता है, खुदा उसे नई मनाजिल सर करने की तौफीक भी अता फरमाता रहता है, लेकिन उसकी सोच में यह अंसर कभी भी दाखिल नहीं हुआ कि ये आखिरी चोटी है जो हम सर कर लेंगे और उसके बाद इत्मीनान से बैठेंगे। इसलिए सारी जिंदगी जिद्दोजहद है, जिंदगी की आखिरी सांस तक मोमिन का जहाज जारी रहता है। मौत के बाद क्या है ये हम नहीं जानते, लेकिन यह जरूर अंदाजा हो सकता है कि वो खुदा जिसने ये सिलसिला तरक्कियों का जारी फरमाया है उसने मौत के बाद भी कुछ सिलसिला तरक्कियों का जरूर जारी रखा होगा, वरना यह मुमकिन नहीं कि इतना लंबे तरक्कियात के दौर से इंसान को गुजार कर खुदा तआला किसी ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दे जहां फिर लेट रहना है और खाना खाना है या दूध पीना है और नज़ारे देखने हैं और कोई भी काम नहीं करना, कोई अजब बुलंदी नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूं और यकीनन यही कुरान करीम की तालीम है कि मरने के बाद भी रफ़तों की कोई इंतहा नहीं होगी, बल्कि दराजात इंसान के बढ़ते चले जाएंगे और उन दराजात के लिए उसे रूहानी रंग में कुछ न कुछ मेहनत भी जरूर करनी पड़ेगी। इस तरबियत के मजमून के मुतल्लिक हमें आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से इल्म होता है कि वो बच्चे जो बुलूगत में तक पहुंचने से पहले जब पहले से शरीयत उन पर फर्ज हुई फौत हो जाते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सुपुर्द उनकी रूहें की जाती हैं कि वो तरक्कियात जो दुनिया में नहीं कर सके वो उनकी तरफ उनको तरबियत देकर आगे बढ़ाएं और उनकी नशोनुमा करें। तो अगर नशोनुमा का सिलसिला बच्चों में जारी है तो हरगिज बईद नहीं बल्कि ज्यादा करीने कयास है कि बड़ों में भी आइंदा तरक्की की राहें खुली रहेंगी। बहरहाल बाद की दुनिया के हालात तो बाद की दुनिया में जाने के बाद ही हकीकी तौर पर मालूम हो सकते हैं, लेकिन कुरान करीम ने जो खिड़कियां खोली हैं उससे मैं यही अंदाजा लगाता हूं कि कोई आखिरी ऐसी आराम की मंजिल नहीं है जिसके बाद जिद्दोजहद खत्म हो जाती है। बस इस दुनिया में तो जिद्दोजहद हमारी जिंदगी का एक लाजिमा है और जैसा कि मैंने बयान किया मजहबी दुनिया में तो रिटायरमेंट का कोई तसव्वुर नहीं। अगर रिटायरमेंट का कोई तसव्वुर होता तो सबसे ज्यादा नबी हकदार थे कि उनको रिटायर किया जाता, इतनी मेहनत उठाते थे, इतने कौम के लिए उन्होंने दुख बर्दाश्त किया और हमेशा करते रहे और इतना मुसलसल उनके जहनों पर और उनके आसाब पर बोझ रहा कि दुनियावी मशक्कतों से बढ़कर जहनी बोझ उनकी सेहतों पर ज्यादा असरअंदाज होता रहा। चुनांचे आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि मुझे तो हूद ने बूढ़ा कर दिया। तीन सूरतें इकट्ठी हैं, तीनों का जिक्र मिलता है एक आयत एक हदीस में है शैयबत नियल हूद कि मुझे तो सूरह हूद ने बूढ़ा कर दिया, यानी लोगों को तो उम्र बूढ़ा करती है, वक्त गुजरता हो वक्त बूढ़ा करता है या जिस्मानी मुशक्कतें करती होंगी, लेकिन मुझे तो इस मजमून ने जिसने जो सूरह हूद में नाजिल हुआ है जिसने मुझे डरा दिया कि कौमें किस तरह हलाक हुआ करती हैं इसकी फिक्र ने बूढ़ा कर दिया है। तो अम्बिया के ऊपर जो जहनी बोझ होते हैं वो आम जिस्मानी बोझों से बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिमांडिंग होते हैं, उनकी सेहत के ऊपर वो ऐसे गहरे बदअसर छोड़ते हैं कि खुदा का फजल अगर गैर मामूली शामिल हाल न हो तो वो अपने काम की जिम्मेदारी को निभा ना सके। यही वजह है कि नहायत पाकीज़ा जिंदगी के बावजूद जो बज़ाहिर उम्र होनी चाहिए उससे पहले बाज़ दफा वफात होती दिखाई देती है। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले, जिम्मेदारी से पहले के 40 साल जिस तरह पाकीज़गी से गुजरे और उसके बाद जिस तरह पाकीज़गी से सारी जिंदगी गुजरी, उसमें बज़ाहिर यह मालूम होता है कि उम्र बहुत लंबी होनी चाहिए और फिर ग़िज़ा में भी बहुत ही ज्यादा सादगी, इस हद तक के किसी किस्म की मुज़िर ग़िज़ा का कोई तसव्वुर ही नहीं है। फिर ज्यादा खाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन कम खाकर अपने आप को एक ऐसी जिंदगी की आदत डाल लेना अंबिया का शेवा हुआ करता है कि जिसके नतीजे में उनके जिस्म में कोई भी जायद बोझ नहीं रहता। एक चर्बी का खतरा भी हम नहीं कह सकते कि उनके जिस्म पर जायद बोझ है। इन हालात में बाज़ अंबिया की उम्रें बड़ी लंबी भी गुजरी हैं, लेकिन जो सबसे अजीम शान नबी दुनिया में पैदा हुआ इन हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्र एक पहलू से 62.5 साल बनती है और अगर इस यानी सूरज के सालों से हिसाब किया जाए तो 60 साल बनती है। बड़ी वजह यह थी कि आपके ऊपर बेइंतहा ज़हनी बोझ थे, इतने गैर मामूली असाबी तनाव थे कि इबादत के जरिए वो हल होते रहते थे, लेकिन उसके बावजूद सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुज़िर किरदार अगर किसी चीज ने अदा किया है तो आपकी जिम्मेदारियों ने अदा किया। और इस पहलू से मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी को रिटायरमेंट का हक है तो अंबिया को रिटायरमेंट का हक है, लेकिन आखिरी सांस तक, आखिरी होश के लम्हे तक अंबिया अपने कामों में मसरूफ रहते हैं, बल्कि बोझ उनके बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर भी हालात पर गौर करने से ये मालूम होता है। बस उसकी बुनियादी वजह यही है कि मजहबी दुनिया में तरक्यात जिंदगी के आखिरी सांस तक हमारे लिए मुकद्दर है और कोई तरक्की ऐसी नहीं जो मुफ्त में हासिल हो सके। हर तरक्की के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, हर तरक्की के लिए कुछ सर्फ करना होगा। ये वो एक साइंटिफिक असूल है जिसमें कोई आप इस्तिस्ना नहीं देखेंगे। अगर फजल का मजमून किसी के जहन में आए फिर वो क्या चीज है, तो जो तरक्की मिलती है वो फजल से मिलती है, मेहनत के साथ उस किस्म की उसको मुनासबत नहीं है जैसे दुनियावी मेहनत में अमल और जज़ा की एक मुनासबत हुआ करती है, बल्कि रूहानी जिंदगी में और मजहबी जिंदगी में हम जितनी मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज्यादा अजर पाते हैं। इसलिए वो कई गुना ज्यादा अजर पाना और महदूद मेहनत का लाभ उतना ही फल मिलना, ये सारा फजल से ताल्लुक रखने वाला मजमून है। बहरहाल इस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, मैं मुतवजह ये करना चाहता हूं कि अगर जमात अहमदिया में से किसी को या बास को यह ख्याल हो कि इब्तला का दौर लंबा हो रहा है या एक जगह की बजाय दूसरी जगह भी इब्तला शुरू हो गए, तो इसके नतीजे में खौफ नहीं उसके दिल में पैदा होना चाहिए, मायूसी पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे इब्तला सारी मजहबी तारीख गवाह है कि मजीद बुलंदतर मनाजिल की तरफ ले जाने वाले हुआ करते हैं। लामजहब कौमों के इब्तला बाज दफा उनको हलाक कर देते हैं, लेकिन बाखुदा मजहबी कौमों के इब्तला उनको कभी हलाक नहीं किया करते। लाजिमन बिला इस्तिस्ना हमेशा हर इब्तला के बाद वो नई कुव्वत, नई शान, नई जिंदगी के साथ बाहर निकलते हैं। बस इसलिए इब्तला पर नजर करें और उनके मुकाबले की कोशिश करें लेकिन मायूसी की कोई वजह नहीं। अभी पाकिस्तान में जो सिलसिला जारी है वो तो जारी ही है, लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ भी बाज बैरूनी मुलानों ने और बाज बैरूनी हुकूमतों ने रुख किया है, और बाज ऐसे इलाके जहां अहमदीयत सबसे पहले जाहिर हुई थी और अहमदीयत के लिए वहां बुनियाद बने, वो आजकल उनकी शरारत की तवज्जो का मरकज हैं। ब्रह्मणबाड़िया और उसके गिर्द माहौल में जमातों का एक गुच्छा है जो बड़ी देर से कायम है अल्लाह ताला के फजल के साथ, और उन ब्रह्मणबाड़िया से फसाद शुरू करके अब इन मौलवियों ने उन फसादात को देहात में पहुंचा दिया है, और बाज जगह शदीद मजालिम किए हैं, बाज नौजवानों को भी बूढ़ों को भी इतना मारा गया कि गोया वो यानी मौत के किनारे पहुंच गए, और अल्लाह ताला ने फजल किया बाज ऐसी हालत में मिले बाज दूसरों को कि वो जिस शीर्षक शीर्षक के कोई दम तोड़ रहा हो ऐसी हालत थी, और खुदा ताला ने फजल किया वक्त पर फिर उनको अस्पताल भी पहुंचाने का इंतजाम हो गया, और बाज अभी अस्पतालों में हैं, बाज अस्पतालों से फारिग हो चुके हैं, लेकिन उन पर जो दबाव है वो ये है कि हम तुम्हें मार मार के हलाक कर देंगे जब तक तुम मुर्तद न हो, और वहां खसूसियत के साथ रुख इर्तदाद की तरफ है। पाकिस्तान में जो हालात हैं उनमें और इन हालात में एक फर्क है। पाकिस्तान में कलमा पढ़ने से रोका जा रहा है, और कहा जाता है कि जब तक तुम कलमे से बाज नहीं आओगे उस वक्त तक हम तुम्हें मारते रहेंगे। वहां वो अपने जहालत में शायद ये समझते हैं कि हम कलमा नहीं पढ़ते, वो कलमा पढ़ाने के लिए मारते हैं, और जब कलमा पढ़ के सुनाते हैं अहमदी तो कहते हैं कि नहीं इसके साथ नसीब मौत का इनकार भी करो। लेकिन मेरे इल्म में बांग्लादेश में कोई ऐसा वाकया नहीं आया कि कोई अहमदी कलमा पढ़ता हो इसके नतीजे में उसको सजा मिली हो। दरअसल तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का इनकार करवाने के लिए ये सारे मजालिम तोड़े जा रहे हैं, और एक आध जगह से इर्तदाद की भी खबरें मिली हैं। मसलन ब्रह्मणबाड़िया में एक दो ऐसे अशखास के मुतल्लिक इर्तदाद की इत्तला मिली जो मजालिम को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन उसके बावजूद खुशकुन पहलू ये है कि उनके बीवी और बच्चों के खतूत बुझाने शुरू हुए, और उन्होंने अपने खामन से या अपने बाप से बेजारी का इजहार किया और इस्तगफार का के मुतल्लिक बताया कि मुसलसल इस्तगफार कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए दुआ करें, हम तो ये फैसला कर बैठे हैं कि उसका मुकद्दर अगर हलाक खराब हुआ तो अल्लाह ताला हमें इस जलील अंजाम से बचाए, और जान भी जाए तो तब भी हमारा ईमान सलामत रहे। इस किस्म के खत मिलते हैं उनकी तरफ से। तो इर्तदाद है अगर तो बहुत थोड़ा, और ऐसा नहीं है कि खानदान के खानदान अलग हो जाएं। दूसरे मुर्तदों के मुतल्लिक जो चंद हैं गिनती के, उनके मुतल्लिक वहां की जमात की इत्तला यह है कि ये वैसे ऐसे लोग हैं जो पहले ही ना सिर्फ ये कि जमाती ताल्लुक में बहुत कमजोर थे बल्कि बाज गंदे कारोबार में मसरूफ थे। ऐसे कारोबार थे इनके और मामलात में ऐसे गंदे थे कि उनकी वजह से जमात पर दाग थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक लिहाज से तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब दुश्मन के साथ मुकाबला हो रहा हो, सफाराई हो इसी मजमून पे कि ईमान सलामत रहता है कि नहीं रहता, उस वक्त कमजोर भी जाए तो दाग जरूर पड़ता है और तकलीफ जरूर होती है। अगर वो ऐसे थे तो उनको वक्त के ऊपर संभालना चाहिए था, अगर ऐसे थे तो उस वक्त उनको कोशिश करनी चाहिए थी वापस लाने की। अदम तवज्जो के नतीजे में अगर बीमार उज्व भी काटना पड़े तो उस पर यह कहकर तसल्ली का इजहार करना कि बीमार था काटा गया, ये तो बड़ी बेवकूफी है। बीमार तो था लेकिन काटने की नौबत क्यों आई? और अगर सब कोशिशें कर ली गई और उसके बावजूद ऐसा हुआ, जैसे बाज दफा हुआ करता है, इंसान के बस में नहीं होता, بعض بدنصیب ہیں جنہوں نے بدنصیب ہی رہنا ہے، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے پوری کوشش ہوئی لیکن یہ بچ نہیں سکا. اس کے باوجود دل میں دکھ ہوتا ہے. ایک احمدی بھی کہیں دنیا میں ضائع ہو، چاہے ہماری غفلت کی وجہ سے یا اپنی بدنصیبی کی وجہ سے، تو اس کا دکھ پہنچتا ہے. اس لیے جو بھی احمدی جہاں ضائع ہوں ان کو واپس لانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کہہ کر معاملے کو ختم نہیں سمجھنا چاہیے کہ گندا تھا نکل گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجھے یقین ہے ان کی اطلاع درست ہوگی، اگر چند گندے آدمی جماعت سے الگ ہو جائیں تو اس سے مایوسی بہرحال نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر ارتداد کے بعد اللہ تعالیٰ کثرت سے دوسرے پھل عطا فرمائے گا جو پہلوں سے بہتر ہوں گے. اس لیے خدا تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تو جماعت احمدیہ کے حق میں پہلے بھی پورا ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا. اس بارے میں ہمیں کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے، بلکہ شک کرنا بھی اپنے نفس کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے. خدا تعالیٰ کی رحمت کا، خدا کی تائید کا ہاتھ جماعت کے ساتھ اتنا واضح ہے، اتنا کھلا ہے، اس طرح بار بار ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بعد بہت ہی کوئی بدنصیب انسان ہوگا جو خدا تعالیٰ کے وعدوں پر شک کرے. اس لیے ہمیں تو کوئی شک نہیں اس بات میں کہ لازماً پہلے سے بہت بڑھ کر جماعت احمدیہ کو انفرادی قوت بھی نصیب ہوگی اور روحانی قوت بھی نصیب ہوگی، اور اخلاقی لحاظ سے بھی جماعت پہلے سے بہت زیادہ ترقی کرے گی. لیکن صرف یہی کافی نہیں ہے، یہ امید بھی صرف کافی نہیں ہے. اس امید کے ساتھ ہمیں اپنی کوششوں کو پہلے سے زیادہ تیز کرنا چاہیے، ہر ٹھوکر کے بعد اپنی رفتار کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر تکلیف کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ آئندہ اس ایسی تکلیف کی راہ کیسے بند کی جائے، اس کے ازالے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے جہاں جہاں بھی جماعت میں کہیں اقتضاد ہوا ہے یا کمزوریاں دکھائی گئی ہیں، وہاں کی انتظامیہ کو اور بحثیت ملک، سارے ملک کی انتظامیہ کو آئندہ کے لیے جماعتی حفاظت کے لیے بہتر سامان پیدا کرنے چاہیے. اور سب سے بہتر روحانی حفاظت کا سامان نیکیوں کی عادت ڈالنے سے ہوتا ہے، نصیحت سے نہیں ہوا کرتا اتنا. یعنی اگر یہ نصیحت کی جائے کہ تم لوگ مرتد نہ ہو، کمزوری نہ دکھاؤ، کچھ اثر تو ضرور ہوتا ہوگا، لیکن سب سے زیادہ انسان کی ابتلاء میں حفاظت کرنے والی چیز اس کی وہ نیکیاں ہیں جو پہلے سے جاری ہوں، اور ان نیکیوں کو نئی جلا ملتی ہے ابتلاء میں. اور اگر اندر سے کوئی کھایا ہوا وجود ہے تو وہ اس کا کھوکھلا پن ظاہر ہو جایا کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس جہت سے جماعتوں کو پروگرام بنانا چاہیے کہ جہاں جہاں بھی ابتلاء کے بادل ہیں وہاں خصوصیت کے ساتھ جماعت کی روحانی اور اخلاقی ترقی کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر نمازوں میں کمزوری ہے تو ان کو نمازوں میں قائم کیا جائے، اگر مالی قربانی میں کمزوری ہے تو مالی قربانی میں ان کا قدم آگے بڑھایا جائے، اگر نظریاتی لحاظ سے علم کی کمی کی وجہ سے کمزوری ہے تو پھر علم کی کمی پوری کرنی چاہیے. تو بہرحال جہاں بھی دشمن حملہ کرے اس کی جوابی کارروائی کے لیے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، غور کے بعد ایک جوابی کارروائی طے ہونی چاہیے. جہاں تک عمومی طور پر ساری دنیا کے جماعت کا رد عمل کا تعلق ہے، اس میں سب سے پہلے میں آپ کو دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں. جہاں تک ان اطلاعوں کے نتیجے میں دنیاوی کوششوں کا تعلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بلا تاخیر جس وقت کوئی بری اطلاع آتی ہے جوابی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ہر امکانی جہت میں شروع ہو جاتی ہیں. جہاں تک انسانی عقل کام کرتی ہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرماتا ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا گوشہ نہیں چھوڑا جاتا جہاں انسانی کوشش ہو سکتی ہے اور جماعت نہ کرے. لیکن میرا یہ تجربہ ہے کہ انسانی ساری کوششیں ایسے موقعوں پر بیکار جاتی ہیں. وہ اللہ کے حکم کے نتیجے میں ہم کرتے ہیں، और इस वजह से करते हैं कि हम खुदा के कानून से बाला नहीं हैं। हमें लाजमन जो कुछ हम कर सकते हैं हमें करना होगा, लेकिन हमेशा मसाइल दुआ से हल होते हैं। और जब ये सारी कोशिशें बिल्कुल बेकार हो जाती हैं, जब ऐसी पत्थर की दीवार सामने नजर आती है कि आगे कोई रास्ता दिखाई न दे, उस वक्त एक ही गुर है जो कारामत साबित होता है और वो दुआ का है। एक ही हथियार है जो इन रोकों को तोड़ देता है, पाश पाश कर देता है, और वो दुआ का हथियार है। और उस वक्त फिर खुदा ताला की कुदरत जिस तरह अजीब रंग में जाहिर होती है, उससे जो लज्जत पैदा होती है उसका कोई आम दुनियावी कोशिशों की कामयाबी के मुकाबले उससे उसका कोई मुकाबला का उस लज्जत से कोई मुकाबला नहीं जो रूहानी हथियार यानी दुआ के जरिए इंसान को कामयाबी से हासिल होती है। चुनांचे जमात अहमदिया को सबसे पहले और सबसे अहम दुआ की तरफ मुतवज्जे करता हूं। ये इतला बढ़ रहे हैं और फैल रहे हैं और इसके पीछे बड़ी बड़ी हुकूमतों की साजिशें हैं जिनकी इतलाएं जमात को मिल रही हैं, और जो जमात मुकाबले पे कोशिश कर सकती है कर रही है, लेकिन ये मसाइल दुआ के बगैर हल नहीं होंगे। अल्लाह ताला का गैर मामूली फजल आप मांगेंगे तो वो नाजिल होगा। कुछ फजल बिन मांगे नाजिल हुआ करते हैं रहमान के, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका रहीमियत से ताल्लुक है, और इब्तला के दौर का रहीमियत से गहरा ताल्लुक है। इसकी तफसील में इस पर जाने का वक्त नहीं है क्योंकि ये एक तफसीली मजमून है, लेकिन इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इब्तला के अदवार का रहीमियत से गहरा ताल्लुक हुआ करता है, और रहीमियत के लिए आपको मांगना पड़ेगा, बिन मांगे नहीं मिलेगा। अपने नेक अमाल के जरिए मांगना होगा, अपने जुबान के जरिए, अपने दिल के जरिए, जो कुछ भी आपके बस में है, जिस रंग की आजी की दुआ आप कर सकते हैं वैसी दुआ करें, और फिर देखें कि अल्लाह ताला किस तरह इन खतरनाक रास्तों से बड़ी कामयाबी के साथ और इत्मीनान के साथ आगे गुजारता है। दूसरी बात जो अमूमी तौर पर जमात कर सकती है वो ये है कि जहां जिस किस्म की मुखालफाना कोशिश हो उसके जवाब में सारी जमात दुनिया में हर जगह अपने मेयार को बढ़ा दे और पहले से ज्यादा नेकियां अख्तियार करें। अगर मसाजिद तोड़ी जा रही हैं, मसाजिद बर्बाद की जा रही हैं, तो मसाजिद बढ़नी चाहिए। अगर गुरबा के घर बर्बाद किए जा रहे हैं तो गुरबा के घरों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। यानी जिस रंग में भी दुश्मन जुल्म करता है उसकी जवाबी बरह रास्त कार्रवाई सारी दुनिया में जमात कर सकती है, और वो नेकियों के जरिए, उसी किस्म की नेकियों के जरिए जिनका इब्तला के साथ एक कुदरती ताल्लुक है। चुनांचे इस इब्तला में बांग्लादेश में खसूसियत के साथ एक उन्होंने मस्जिदों पर हमला किया है और एक गुरबा के घरों पर और गुरबा की तजारतों पर। इसलिए हमें इसके रद्देअमल के तौर पर दो तरह से सारी दुनिया में अपनी बाद नेकियों को खसूसियत से आगे बढ़ाना चाहिए। मस्जिद से ताल्लुक को बढ़ाना चाहिए, जहां जहां मसाजिद हैं जैसा कि मैंने पहले भी नसीहत की थी उनकी जीनत की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, उनकी सफाई की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जहां जहां मसाजिद नहीं हैं और जमातें हैं छोटी ही हों वहां मसाजिद बननी चाहिए, और अल्लाह के फजल के साथ जो इतलाएं मिल रही हैं गुज़श्ता चंद महीने में अल्लाह के फजल से जमात की मस्जिदों की तरफ बड़ी गैर मामूली तवज्जो हुई है, बन रही हैं, लेकिन चूंकि मस्जिदों पर खसूसियत से हमला है इसलिए और ज्यादा तेजी के साथ हमें बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बड़ी मस्जिद भी बना सकते कोई झोंपड़ी वाली मस्जिद बना लें, लेकिन मस्जिदों की तादाद में गैर मामूली इजाफा करने की जरूरत है। गुरबा के घर लूटे जा रहे हैं तो गुरबा की तरफ तवज्जो करें, जहां जहां जमाते हैं वो अपने गुरबा का ख्याल रखें, उनकी मुसीबतें दूर करने की कोशिश करें, जिनके पास जरिया माश नहीं है उनको जरिया माश मुहैया करने की कोशिश की जाए, जिनके पास घर नहीं है उनके घर बना के दिए जाएं। ये बज़ाहिर बांग्लादेश से दूर हजारों मील दूर एक वाकया हो रहा होगा, कहीं छोटी सी मस्जिद बन रही है, कहीं किसी गरीब के घर की मरम्मत में जमात कोशिश कर रही है, कहीं उसको नया घर बना के दे रही है। ये जो वाकयात हैं बज़ाहिर इनका कोई ताल्लुक नहीं है, हजारों मील के फासले पर एक वाकया छोटा सा हो रहा है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि खुदा की तकदीर में इनका आपस में गहरा ताल्लुक है। जिस किस्म का हमला हो उसकी जवाबी इस्लाही कार्रवाई करना और नेकी में उसी मैदान में आगे कदम बढ़ाना, ये कुरान करीम का हुक्म है। इसलिए अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा की तकदीर ऐसी कमजोर जगहों पे भी आपकी मस्जिदों की हिफाजत करेगी जहां आपकी ताकत पहुंच नहीं सकती। जहां आपकी ताकत है वहां मस्जिदों के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करें, जहां आपकी ताकत नहीं है वहां खुदा आपकी मोहब्बत को पहुंचाएगा और आपकी मोहब्बत पर करम और रहम की नजर करते हुए उन कमजोर जगहों पे भी आपकी मस्जिदों की हिफाजत करेगा। अगर आप उन गरीब घरों को मिसमार होने से नहीं बचा सकते जिन तक पहुंचना आपकी ताकत में नहीं है, तो जिन गरीबों तक पहुंचना आपकी ताकत में है उनके घरों के लिए कुछ कोशिश करें, कुछ जिद्दोजहद करें, कुछ उनका इंतजाम करें, और फिर आप देखें कि किस तरह अल्लाह ताला की तकदीर कमजोर जगहों के भी गरोबा के एमजी गरोबा के घरों की हिफाजत फरमाएगी। ये एक बिल्कुल कती बात है, इसमें कोई अफसानवी पहलू नहीं है, इतनी कती है जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त जो मेरे सामने बैठे हैं या मैं आपको देख रहा हूं। लाजिमन ऐसा हुआ होता रहा है, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। इसलिए इन दो अमूर की तरफ मैं खसूसियत से आपको मुतवज्जे करता हूं। मस्जिदों के जिमन में एक हॉलैंड की मस्जिद का वाकया गुजरा था जो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये साजिश बैनुल अक्वामी है, इसके पीछे बाज़ बड़ी बड़ी हुकूमतों का और बड़ी बड़ी मालदार हुकूमतों का हाथ है, इसलिए ये हर जगह पहुंचेंगे, हर जगह शरारत करने की कोशिश करेंगे। जहां भी इस वक्त अल्लाह ताला के फजल से शरारत नहीं है वहां की जमात को बेदार मकसद भी होना चाहिए। चुनाचे मैंने उसी वक्त सारी दुनिया की मजालिस जमातों को हदायत दी थी कि अपने इतने कीमती मुसव्वदात की भी हिफाजत का इंतजाम करें और अपनी मसाजिद की हिफाजत का पहले से बेहतर इंतजाम करें, यह भी इसी स्कीम का एक हिस्सा है। लेकिन बहरहाल जो जिन मसाजिद को नुकसान पहुंचा है उनकी तामीर नौ में भी हमें जहां तक किसी को तौफीक का हिस्सा लेना चाहिए। चुनाचे हॉलैंड की मस्जिद के लिए मैंने ऐलान किया था कि जिन लोगों को तौफीक है, दोस्तों को तौफीक है, वो उसे पहले से बहुत ज्यादा शानदार बनाने के लिए अगर खुदा की राह में कुछ खर्च कर सकते हैं तो करें। इसी तरह बांग्लादेश की मस्जिद में जब भी खुदा तौफीक देगा हमें उनको न सिर्फ ये कि दोबारा बहाल करना है बल्कि पहले से बहुत ज्यादा बढ़ाना है, और अगर कोई मामूली छपरों की मस्जिद थी तो उसे पुख्ता बना के देना है। चंद नमाजी पर नमाज पढ़ सकते थे तो कई गुना ज्यादा नमाजियों के लिए गुंजाइश पैदा करनी है। कोई एक जगह भी दुनिया में ऐसी नहीं जहां अहमदी मस्जिद पर हमला हुआ हो और जवाबन हमने उससे ज्यादातर वसी मस्जिद बनाने की कोशिश नहीं कर ली। ये तो लंबे फासले हैं, लंबे सफर हैं, इंशाल्लाह इसी तरह हम ये सफर आगे करके चले जाएंगे। जमात का जहां तक ताल्लुक है अपने तौर पर अपने इलाकों में मस्जिदों के अलावा भी जिन मस्जिदों को नुकसान पहुंचा है उनके लिए कुछ हिस्सा लें। इस जमन में एक ताकीद है कि जिन अहबाब ने सत्साला जुबली में अभी अपने बकाया अदा करने हैं या बाद और किसी बड़ी तहरीक में अपना चंदा भी अदा करने वाला बाकी है, वो सवाय इसके के तबर्रुक के तौर पर बिल्कुल मामूली हिस्सा लें, पहले अपने बकाया अदा करें फिर नई तहरीकात में हिस्सा लें। सत्साला जुबली के काम भी बहुत ज्यादा हैं और बड़े डिमांडिंग हैं, यानी उनके वक्त थोड़ा रह गया है, काम बहुत ज्यादा हैं, अखराजात बहुत हैं उसे दुखने वाले, इसलिए उस चंदे को तो बाहर अहमियत देनी चाहिए। जिनके बकाए हैं वो पहले बकाया अदा करने की तरफ कोशिश तवज्जो करें, फिर अल्लाह ताला तौफीक दे तो फिर इन तहरीकात में भी शामिल हो जाएं। तो मस्जिद के लिए मैं अपनी तरफ से मस्जिदों की उन मसाजिद की तामीर के लिए जिन पर दुश्मन हमला करता है। 1000 पाउंड का अपनी तरफ से मैं वादा पेश कर चुका हूं और बताने की इसलिए जरूरत पेश आई है कि बहुत कई दफा मेरा तजुर्बा है कि जब मैं अपना चंदा बता दूं तो जमात बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, जब मैं मख्फी रखूं तो उस बारे में खामोश रहती है। शायद उनको यह तासर पैदा होता है कि मैं जहां चंदा नहीं लिखवाता वहां अहमियत नहीं देता उसको खास, और हालांकि जरूरी नहीं होता कि इंसान बता के चंदा दे। तो बाद चंदे ऐसे हैं जिनमें चूंकि जमात को बताया नहीं गया, मैंने फरिश्तों का जायजा लिया, उनमें कोई तवज्जो नहीं थी जमात की, जहां बताया गया है वहां गैर मामूली तौर पर कुर्बानी में जमात आगे बढ़ी। तो ये एक मुमकिन है, एक तभी फितरी बात हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसी निस्बत से आप भी अपनी तौफीक के मुताबिक जिस हद तक हिस्सा ले सकते हैं लें, लेकिन वही जो पहले 7 साला जुबली के चंदा अदा कर चुके हूं। दूसरा बियुतुल हम्द का मामला है। बियुतुल हम्द में हमारी कोशिश है कि 100 मकान गौरबा को या ऐसे खिदमत दीन की खिदमत करने वालों को जिनको तौफीक नहीं है अपने मकान बनाने की, उनको बनाकर मुकम्मल पेश करें। ये तहरीक 4 साल पहले पेश की गई थी। उस वक्त अल्लाह ताला के फजल से जमात ने बड़ा ही अच्छा रद्द दिखाया और कसरत से इतने वादे मौसूल हुए कि हमारा ख्याल था कि औसतन अगर सारे अखराजात मिलाकर 1 लाख में एक मकान पड़े तो 1 करोड़ रुपया चाहिए होगा, और वादे खुदा के फजल से 1 करोड़ से ज्यादा के आ गए। लेकिन एक बात हमारी नजर से रह गई थी, वो ये कि इस स्कीम का एक ये भी हिस्सा था कि वो गुरबा जिनको पूरे मकान की जरूरत ना हो लेकिन उनका मकान ना काफी हो, या चार दीवारी ना बना सके हों, या गुजरखाना वगैरह ना बना सके हों, या एक ही कमरा है और खानदान बड़ा है, उनकी जुजी मदद भी की जाएगी। और जुजी मदद में किसी को कमरा बना दिया जाएगा, किसी को चार दीवारी बना दी जाएगी। तो ये मुझे अंदाजा नहीं था कि इस हिस्से पर कितना ज्यादा खर्च होगा। नतीजा ये निकला कि अक्सर रुपया इसी हिस्से पर खर्च हो चुका है, और 100 नहीं बल्कि कई 100 मकान ऐसे हैं गुरबा के जिनको किसी को चार दीवारी बना दी गई, किसी को बोर्ची खाना बना के दिया गया, किसी को जायद कमरा बना के दिया गया। तो अल्लाह ताला के फजल से स्कीम का जो फैज जहन में था उससे ज्यादा फैज पहुंच चुका है। उस वक्त जमात की तहरीक को तहरीक दिलाने की खातिर 2-3 साल के बाद मैंने अपना चंदा दुगना कर दिया था, 1 लाख की बजाय 2 लाख कर दिया था, ताकि 2 मकान अगर मैं बना के देता हूं जो साहिब तौफीक हैं वो भी इस मामले में आगे कदम बढ़ाएं। अब जब जायजा लिया है तो उस अभी भी और जरूरत है, इसलिए मैं अपनी तरफ से 1 और मकान का खर्च पेश करता हूं। और जिन दोस्तों को तौफीक है कि वो 1 मकान का खर्च पेश कर सकें, या जिन जमातों को तौफीक है कि वो 1 मकान का खर्च पेश कर सकें, उनको भी इजाजत है, लेकिन इस शर्त के साथ कि 7 साला जुबली के बकायेदार ना हो और बियुतुल हम्द की तहरीक के बकायेदार ना हो। पहले पुराने वादे पूरे करें, फिर खुदा तौफीक अता फरमाए तो फिर बेशक आगे बढ़ें। एक तीसरी तहरीक यह है कि हिन्दुस्तान में हमने शुद्धि की जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, और इसका भी मौजूदा मुखालफाना कोशिशों के साथ एक गहरा ताल्लुक है। वो हमें मुर्तद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका तभी कुदरती जवाब यह है कि जहां जहां मुसलमान को मुर्तद बनाने की कोशिश की जा रही है वहां उस इत्तेजाज को रोक दें और अपने भाइयों को तकवीयत दें और उनको अपने ईमान पर मुस्तहकम करें। चुनांचे ये तीसरी जवाबी अमूमी कार्रवाई है जिसमें सारी दुनिया की जमात को मैं शामिल होने की दावत देता हूं। हिस्सा तो हिन्दुस्तान से ताल्लुक रखता है, वाकफ जिंदगियों का आगे आना, और इंतजामी कोशिशें करना, इन सब का ताल्लुक सिर्फ हिन्दुस्तान से है इन बातों का। लेकिन माली इमदाद देना सुदी की तहरीक को, इसमें तो सारी दुनिया की जमातें शामिल हो सकती हैं, इसलिए इस तरफ भी हमें तवज्जो करनी चाहिए। खुलासा इस वक्त तक के काम का यह है कि इससे पहले हिन्दुस्तान की बड़ी बड़ी मजहबी जमातें जो शुद्धि के मैदान में दाखिल हुई थी और उनके पीछे बाज़ हुकूमतों के रुपए भी थे, बाज़ बड़ी बड़े ताजरों के रुपए भी थे, उनकी तरफ से कोई मौसर कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन जब से जमात अहमदिया इस मैदान में दाखिल हुई है, अल्लाह ताला के फजल के साथ गैर मामूली असर जाहिर हुआ है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उस इलाके के एक बहुत ही बड़े मौजूद मुसलमान जो अपने रसूख के लिहाज से उस सारे इलाके में सबसे इस वक्त बड़े कहे जा सकते हैं, उनका मुझे खत आया कि मैं फलां शख्स हूं और ये मेरे काम हैं और इस किस्म का मेरा रसूख है। मैं अहमदी नहीं हूं, आपको इल्म है, लेकिन मैं शुद्धि की तहरीक के जवाबी कार्रवाई के मुतालिक आपको मुतल करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा इलाका है, मुझे इससे जाती तौर पर मुतल्लक हूं। इसलिए मैं बड़ी फिक्र से यह देखता रहा कि बाज़ उलमा ने, बाज़ जमातों ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन कोई उसका असर नहीं था। कुछ ना कुछ यानी कोई असर तो नहीं कहा उन्होंने, कि बहुत मामूली असर जाहिर हुआ और बहुत से आते थे और थक कर चले जाते थे। फिर जब आपने तहरीक की तो उस वक्त कादियान हरकत में आया और हिन्दुस्तान की अहमदी जमातों ने अपने नुमाइंदे भेजने शुरू किए, और जब वो आए तो उस वक्त नुमाया तौर पर नेक असर जाहिर होने शुरू हुए और एक बड़े इलाके में जहां उन्होंने काम शुरू किया है वहां हम यकीन से कह सकते हैं कि उन्होंने शुद्धि की तहरीक को आगे बढ़ने से रोक दिया है और मुसलमानों में अब नया हौसला पैदा होना शुरू हुआ है। वो लिखते हैं कि मुझे ये देखकर इतना शौक पैदा हुआ कि ये कैसी जमात है, मैं जरा देखूं तो सही, कि मैंने फैसला किया कि मैं कादियान जरूर जाऊंगा। चुनाचे मैं कादियान गया और जो कुछ इन लोगों की जुबानी में सुनता था जो यहां काम करने आते थे, उससे बहुत ज्यादा बेहतर पाया कादियान को। एक ऐसा माहौल था कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता, और मैं बहुत ही मुतमईन और खुश होकर यहां आया हूं, और मेरी उम्मीद अब इस मैदान में सिर्फ जमात अहमदिया पर है। इसलिए मैं आपको खत लिख रहा हूं कि आप स्कीमें जो नेक स्कीम बनाते हैं उसमें मेरा हर किस्म का तावन शामिल होगा, और ये मेरी तजवीजें हैं। अगर आप समझते हैं कि ये मुफीद हैं तो इन पर भी अमल करें। तो ये एक गैर अहमदी ऐसे दोस्त जो, जैसा कि मैंने बयान किया है, बहुत ही बासर बारसूख वसी इलाके पर असर रखने वाले दोस्त हैं, उनके तासुरात हैं। तो अल्लाह ताला के फजल से काम तो हो रहा है, लेकिन जो इस काम में नए मुतालबात सामने आ रहे हैं, नए मैदान सामने आ रहे हैं, उनके नतीजे में मैं समझता हूं कि हमें बैरूनी तौर पर इस काम को आगे बढ़ाने के लिए माली मदद जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा तौर पर हिन्दुस्तान की जमातें उतनी इस्तेआत नहीं रखती। तो इस जमन में भी मैं अपनी तरफ से 1,000 पाउंड का वादा करता हूं और सारी जमात में जो साहिब इस्तेआत हैं और जो अपने पुराने अहम वादे पूरे कर चुके हैं उनको भी दावत देता हूं कि वो जिस हद तक अल्लाह तौफीक दे इसमें हिस्सा लें, और जो वादे जिनके जो बकायेदार हैं यानी सत्साला जुबली के या बीतुल हम के, उनको चाहिए कि सवाब की खातिर या अपने इस ख्याल से कि नफ बिल्कुल महरूम न रहे, टोकन के तौर पर बेशक कुछ दे दें। उससे मैं नहीं रोकता, ना जमात को उनको रोकना चाहिए। बाद मजबूरियों के पेश नजर बकायेदार हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अदा करेंगे, इसलिए उनको कुल्लियतन नेकी से महरूम करने का तो हमें हक नहीं है। इसलिए ऐसे दोस्तों की खातिर मैं ये ऐलान करता हूं कि जमातें उनको रोके नहीं, जबरदस्ती कि हम बिल्कुल नहीं लेंगे। بلکہ ٹوکن کے طور پر جو ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اپنے دل کی تسکین کی خاطر وہ بھی اس تحریک میں کچھ نہ کچھ حصہ لے سکتے ہیں. تو یہ وہ جوابی کارروائی ہے جو بنگلہ دیش کی اطلاعات کے نتیجے میں میں بطور پروگرام کے جماعت کو دیتا ہوں. وہ دکھ پہنچانے میں آگے بڑھتے رہیں، ہم بنی نو انسان کو آرام پہنچانے میں آگے بڑھتے رہیں، وہ مسجدیں گرانے میں بدبختی میں آگے بڑھتے رہیں، ہم مسجدیں تعمیر کرنے اور مسجدوں کو پہلے سے بڑھ کر صاف ستھرا کرنے اور سجانے میں آگے بڑھتے رہیں گے، وہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش میں آگے بڑھتے رہیں، ان کا یہی نصیب ہے. ہم مسلمانوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے آگے بڑھتے رہیں گے ان شاء اللہ تعالی، اور ان سارے کاموں میں کوششوں سے بہت بڑھ کر دعاؤں نے ہماری مدد کرنی ہے، اس لیے دعاؤں کو ہرگز نہ بھولیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. ابھی جمعہ کے بعد جیسا کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، نماز جنازہ غائب ہوگی. یہ لسٹ چونکہ فہرست چونکہ لمبی تھی، اس لیے میں نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی فہرست پر سنا دی جائے، بجائے اس کے کہ ہر جمعہ نماز جنازہ غائب ادا کی جائے. جن لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، میرا خیال ہے دو تین جمعوں کے بعد اکٹھا ان کی فہرست اکٹھی سنا دی جایا کرے اور ان سب کو اکٹھا اس میں شامل کر لیا جایا کرے. یہ فہرست سنا دی گئی تو ان شاء اللہ نماز جمعہ کے مان بعد نماز جنازہ غائب ہوگی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.